सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान बोले भगवान महावीर स्वामी की आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की हम सभी लोग पिछले दिनों और शायद कई दिनों से एक ही बात पर विचार कर रहे हैं कि जो जीवन हमारा शेष बचा है उसे हम और अच्छा कैसे बना सकते हैं। हमने सच्चे देवगुरु शास्त्र के सानिध्य से अपने जीवन की यात्रा शुरू करी है। सच्चे देवगुरु सानिध्य के सानिध्य में हमारी दृष्टि निर्मल होती है, ये हमने जाना है। हमारा ज्ञान निर्मल होता है, हमारे आचरण में निर्मलता आती है। लेकिन सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य पा लेने के बाद भी जब तक हमारे विचारों में स्थिरता नहीं आती है तब तक हम उस सानिध्य का लाभ नहीं ले पाते हैं। सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य हमारे जीवन में स्थिरता लाने में सहयोगी तो बनता है, पर यदि हम पुरुषार्थ न करें स्वयं तो शायद वो उतना लाभकारी नहीं होता। साधन हो लेकिन उस साधन का सदुपयोग करके और अपने साध्य की प्राप्ति न की जाए तो वो साधन अपनी तरफ से हमारा कोई सहयोग नहीं करता। हम सबको कई कई बार सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य मिला है, वो एक साधन की तरह हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन उस साधन का सदुपयोग कर लेना और अपने आत्मस्वरूप रूपी साध्य को प्राप्त कर लेना ये पुरुषार्थ तो हमारे आश्रित है। हमने पिछले दिनों इसलिए ये तय किया था कि हम अपने जीवन में अब विचारों की स्थिरता लाने के लिए कोई ना कोई प्रयास करेंगे और वो प्रयास भी हमने शुरू किया है विचारों की निरंतरता यदि बनी रहे तो फिर विचारों में स्थिरता आने लगती है। जैसे बुरे विचारों की निरंतरता हमारे भीतर बनी रहती है तो वे विचार इतने दृढ़ हो जाते हैं कि हम नहीं भी चाहते हैं तब भी वे विचार आ जाते हैं। हम सामायिक करते हैं, हम पूजा करते हैं और वे बुरे विचार हमारे सामने आने लगते हैं। क्यों? उनका संस्कार प्रबल है, वे बहुत स्थिर हो गए हमारे भीतर। ऐसे ही यदि हम अच्छे विचारों की निरंतरता बनाए रखेंगे तो वे अच्छे विचार हमारे जीवन में दृढ़ और स्थिर होकर के हमारे जीवन को परिवर्तित करने में सफल होंगे। ऐसा हमने पिछले दिनों विचार किया था। भैया, विचार तो मानो कि दूध की तरह हैं, अच्छे विचार भी दूध की तरह हैं, लेकिन दूध पतला हो या गाढ़ा हो या कितने ही सफेद हो यह महत्वपूर्ण नहीं है। देखिएगा, दूध पतला हो, गाढ़ा हो, चाहे सफेद हो, बताइएगा क्या इससे दूध की महत्ता होती है कि दूध गाढ़ा है, दूध पतला है या कि सफेद है बड़ा अच्छा है? नहीं, दूध की महत्ता इससे है कि अगर उसको जमाओ और मथो तो उसमें से नवनीत निकलता है और अगर गर्म करो तो मलाई निकलती है। अगर मलाई निकलती है और नवनीत उसमें से निकलता है तो दूध अच्छा है, और नहीं तो कितने भी सफेद रहा हो, कितने ही गाढ़ा रहा हो और या कि कैसे भी रहा हो, उसका महत्व नहीं। हमारे पास श्रेष्ठ विचार हैं, लेकिन वे श्रेष्ठ विचार मथे जाने पर अगर हमें अपने जीवन के कल्याण का नवनीत दे पाते हैं, कुछ सार उनका हमें मिलता है, वीतरागता का नवनीत यदि उन विचारों से मिलता है तो ही वे विचार हमारे भले हैं। इसलिए हम निरंतर इस विचार की प्रक्रिया को बहुत सजग होकर, सावधान होकर के कर रहे हैं। ये प्रक्रिया ऐसी है मानो जैसे कि गाय जल्दी जल्दी सब खा लेती है, घास जितनी मिलती है रखी जाती है उसके साथ पास में, और रख करके फिर उसके बाद यहां रखी रहती। वो उसके गले में ऐसी व्यवस्था है कि वो उस खाई हुई घास को और अंदर रख लेती है, और फिर धीरे धीरे करके जब खाली बैठती है तो निकाल निकाल करके उसको फिर रोमंथन करती है। वो रोमंथन कहलाता है। विचार की निरंतर प्रक्रिया को जैसे अपन अनुप्रेक्षा कहते हैं, ऐसे ही एक नया शब्द है रोमंथन। गाय का रोंथना जैसे, उसी से बना है ये रोमंथन। जब थोड़ा फुर्सत मिली संसार के कामों से, तब फिर जो है अपने वो जो यहां से हम सुन के जाते हैं विचार, एक साथ घंटे भर में ढेर सारे, या स्वाध्याय करते हैं तो ढेर सारे विचार हमारे अंदर सुन लेते हैं, हम रख लेते हैं, और फिर अब उनको क्या करना, इन विचारों को रख रख के क्या करना। हां, खाली बैठ करके जब इनका रोमंथन, इनको बार बार जो है चिंतन में लाना, बार बार इनको दोहराना, तब जाकर के ये विचार जैसे नवनीत निकलता है दही के मथने से, ऐसे ही इनमें से हमारे जीवन के कल्याण के लिए कोई नवनीत निकलेगा। ऐसी ये अनुप्रेक्षा की प्रक्रिया हम पिछले कई दिनों से करते आ रहे हैं, और रोज उसमें कुछ ना कुछ नया जोड़ के और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन पुराना नहीं भूलते हम। ऐसी ही ये प्रक्रिया है, आगे पाठ पीछे सपाट वाली प्रक्रिया नहीं है ये। यहां तो जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, जैसे कोई एक प्रतिमा ले और फिर दूसरी प्रतिमा की तैयारी करे, तो ऐसा नहीं है कि पहली प्रतिमा में जो जो किया था वो सब छोड़ दो, अब दूसरी प्रतिमा ले ली सो उसका करो। कहते नहीं, पहली का तो पूरा पालन करना ही पड़ेगा, दूसरी भी और ग्यारहवीं भी ले लोगे तो 10 प्रतिमाएं पहले वाली भी पालन करनी पड़ेंगी। ठीक ऐसे ही ये प्रक्रिया है। अगर कल हमने संसार की क्षण भंगुरता पर विचार करके और जो आत्मा की शाश्वत्या है उसका विचार किया था, और अगले दिन यदि हम संसार में कौन शरण है मेरे लिए और कौन शरण नहीं है इस पर विचार करते हैं, तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि यह संसार क्षणभंगुर है। और जब हम तीसरे दिन संसार में अपनी अज्ञानता से मिलने वाले दुखों का विचार करते हैं, तब भी नहीं भूलना चाहिए कि ये वही संसार है जिसमें कहीं कोई मुझे शरण नहीं मिली, ये वही संसार है जिसमें जिस चीज के कांटेक्ट में आता हूं वो कुछ दिन मेरे साथ रह के और फिर नष्ट हो जाती है। और जब जब भी मैं इस बात का विचार करूं कि मैं यहां अपने सुख दुख को भोगने के लिए कितना अकेला हूं, ये मेरी स्वाधीनता है, अच्छा ही हुआ कि कोई मुझे जबरदस्ती दुखी नहीं कर सकता, कोई मुझे जबरदस्ती सुखी नहीं कर सकता, मैं किसी के हाथ का खिलौना नहीं हूं जो चाबी भर के मुझे चलाए। मेरी स्वाधीनता का मुझे बोध हो गया है, मेरे एकत्व का मुझे अनुभव होने लगा है। जब अपने एकत्व का अनुभव हो तब भी ये ध्यान में रहे कि ये संसार जो दिखाई पड़ता है, मैं चाहूं तो अपने अज्ञान से फिर से इसको फैला सकता हूं। यहां शरण खोजने लगूं अगर तो फिर मेरी भूल हो जाएगी, यहां की चीजों को अगर शाश्वत मानने लगूं तो फिर मेरी भूल हो जाएगी, ऐसी सावधानी। और जब जब मैं अपने से बाहर जो लोग मेरे संपर्क में हैं, जिनको मैं अपना मानता हूं और हैं भी मेरे अपने, मेरी मदद करते हैं, भले लोग हैं लेकिन ये लोग भी एक निश्चित सीमा तक ही मेरे हैं, उसके बाद ये मेरे नहीं हैं। सब अपने अपने जीवन को अपनी तरह से जीते हैं। मैं अपने जीवन को, मेरा ज्ञान दर्शन का अनंत चतुष्टय अलग है और ये पर पदार्थ हैं इनका अलग है। पर में तो जीव भी पर है और ये शरीर भी पर है। ऐसे अपने से पृथक वस्तुओं का विचार करके तब भी हम नहीं भूलें कि हम क्या हैं। और जब हम अपने शरीर का विचार करें, उसकी अपवित्रता का विचार करें, तब भी ध्यान रहे कि क्षणभंगुरता इस संसार की हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसे पीछे पीछे की सारी अनुप्रेक्षाएं जब हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो याद में बनी रहनी चाहिए। जहां जैसा अवसर आता है वहां वैसा हमारे भीतर विचार आ जाना चाहिए। जैसे हमने आपसे कहा था कि किसी अपने प्रियजन से जब वियोग होता है तब कैसा मन में विचार आता कि अब पता नहीं कब क्या होगा। ये एक व्यक्ति था जो कि मेरे सहयोग के लिए था, अब नहीं है, तब फिर क्या विचार आना चाहिए। फिर जिस जिसको अपना माना वो छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुल। मैं अगर व्याकुल होऊंगा तो एक नई व्याकुलता मेरे भीतर और उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा विचार आना चाहिए। जहां जहां मैं शरण खोजने की कोशिश करूं वहां ऐसा विचार आना चाहिए कि नहीं, यहां शरण नहीं खोजी जा सकती। शरण मिल तो जाती है लेकिन वो मेरे ही अपने परिणामों के ऊपर आधारित है, मेरे अपने स्वभाव की शरण मुझे लेनी चाहिए। और फिर हमने ये भी विचार किया है पिछले दिनों कि भैया इस संसार में तो हम अच्छा बुरा कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, कहाँ कहीं शांत बैठ पाते हैं। शरीर शांत बैठ जाता है, वाणी शांत हो जाती है, लेकिन मन तो निरंतर यात्रा करता रहता है। तो मन वचन काय की जितनी क्रियाएं हैं उनके द्वारा निरंतर मेरे संस्कार, नए नए शुभ और अशुभ संस्कार पड़ते रहते हैं, उन्हीं को हम पुण्य और पाप कर्म कहते हैं। वे सब मेरे भीतर आते रहते हैं और संचित होते रहते हैं, और इतने ही नहीं जब वे अपना फल देते हैं तो मुझे मुश्किल में डाल देते हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इन आने वाले कर्मों के द्वार पर कोई ना कोई पहरा बिठा देना चाहिए, और वो पहरा किस बात का हो सकता है। महाराज ने जैसे अभी अपने जीवन के बारे में और बहुत सारी, मुझे भी इतनी बात जो उन्होंने सुनाई नहीं मालूम थी, बहुत थोड़ी सी बात बात की मालूम थी, मुझे बहुत मुश्किल लगती है जब मैं सुनता हूं कि किसी ने अपने माता पिता के बिना अपना जीवन इतना ऊंचा बना लिया। भैया बहुत कठिन है, जिसने उस वियोग के दुख को सहा है वो समझता है कि माता पिता उनको नहीं समझ में आता, जिनको जिंदगी भर माता पिता मिले हों उनसे पूछो, जिनके कि बचपन से माता पिता नहीं होते और वे अपने जीवन को कैसे बनाते। ये ठीक है कि इस संसार में जीव अपना पुण्य पाप लेके आता है सो उसके अनुसार वो आगे बढ़ता चला जाता है, पर कठिन मामला है। तब उस समय क्या विचार आना चाहिए? यही विचार आना चाहिए, सच्चा ज्ञान तो यही है। भले ही महाराज कह रहे कि हम चौथी पूरी नहीं पढ़ पाए हुई हैं, भैया क्या काम में आने वाली डिग्री और क्या काम में आने वाला आपका भौतिक ज्ञान? ज्ञान तो वो है कि सा गुप्ति समिति धर्मान उपरेक्षा परिषय जय चारित्रयी, कर्मों के आने के द्वार को जो रोक सके सो ज्ञान सच्चा है, बाकी सब ज्ञान झूठा है जिससे कर्मों का आगमन होता। ऐसा विचार हमारे भीतर आना चाहिए कि अरे मेरे अपने कर्मों के आने का द्वार तो मैंने रोका नहीं और बड़ा ज्ञानी बन के बैठा हुआ हूं मैं और बड़ी बातें करता हूं, मेरे अंदर गुप्ती मन वचन काय की एकाग्रता का कोई उपाय मैंने किया? मैंने अपनी क्रियाओं पर कोई सावधानी रख करके समिति का पालन किया कि नहीं किया है? मैंने उस समिति के पालन करने के लिए 10 धर्मों का कभी विचार किया? 22 परिसय सहे 12 भावनाएं भाई हैं, मैंने कोई चारित्र अपने जीवन में अंगीकार करा है कि नहीं करा? अगर इसमें से कुछ भी हमारे पास नहीं है तो कोई हमारे आने वाले कर्मों को रोकने का उपाय ही नहीं है। अपने आने वाले कर्मों को रोक करके और ऐसी संबर भावना भाना चाहिए और जो कर्म अज्ञानता में हमारे भीतर संचित हो गए उनको निकालने का उपाय भी हमें करना चाहिए। अपनी इच्छाओं का निरोध करके विभिन्न प्रकार के 12 तप करके करना चाहिए और जिस लोक में जो 6 द्रव्यों से मिलके बना हुआ है उसमें हम बैठे हुए हैं और अपने को कर्ता धर्ता मान के बैठ जाते हैं, थोड़ा सा कर लेते तो फूले नहीं समाते कि मैंने किया है, मैंने ऐसी गृहस्थी बनाई, मैंने ऐसा जो है इतना मकान बनाया, मैंने ऐसी दुकान बनाई, ऐसा अहंकार कर लेते हैं। उस अहंकार को अपने को तोड़ना चाहिए ऐसा विचार करके कि इस लोक को किसने बनाया बताओ तो, ये तो 6 द्रव्यों से मिलके अनादि काल से बना है, अनंत काल तक रहेगा और इसमें जीव जो है अपनी अज्ञानता से भटकता रहता है क्योंकि समता भाव नहीं रखता, हर्ष और विषाद करता, अहंकार और ममकार कर लेता। इसलिए ऐसा विचार अपन ने पिछले दिनों किया था। मैं तो सोचता हूं कि ये सब बातें अगर आ गईं तब फिर जो है आगे का मामला बहुत स्पष्ट हो जाता है। ऐसा अगर ज्ञान है तो वही ज्ञान समीचीन ज्ञान है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना ही दुर्लभ है और सब चीजें तो सब सुलभ है। क्या कहते हैं तुलसीदास जी ने लिखा है एक जगह पर, गुरु कृपा और हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोए, वो सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हुए। मैं बैठे बैठे विचार कर रहा हूं कि बात तो यही है, हमें बहुत सारी चीजें जो दुर्लभ हैं वे भी हासिल हो जाती हैं। एक इंद्री से त्रस पर्याय प्राप्त करना दुर्लभ है सो वो भी हमें प्राप्त हो गई, वो भी अब ज्यादा दुर्लभ नहीं रही। 2 इंद्री से 3 इंद्री होना दुर्लभ है, 3 इंद्री से 4 इंद्री और संगी पंचेंद्री होना तो महान दुर्लभ है कहते, वो भी हमें दुर्लभ होने पर भी सुलभ हो सकती है। और इतने नहीं, मनुष्य होना भी दुर्लभ है वो भी हमने सुलभ बना लिया है, वो भी हमें प्राप्त हो गया है। मनुष्य होकर के सुकुल पे प्राप्त हो जाना और जिनवाणी सुनना, सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य मिलना, ये क्रम क्रम से भारी दुर्लभ है, लेकिन वो भी सुलभ हो सकता है। और हो गया। ये सारी दुर्लभताएं कितने आसानी से हमें प्राप्त हो गई हैं, कैसे हमने इनको सुलभ बना लिया है, और उसके बाद इसको हम सुलभता से अगर गंवा रहे हैं तो फिर इनकी दुर्लभता क्या है। दुर्लभ तो वो है जिससे कि हम अपने उस आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेवे। जिन वाणी सुनना दुर्लभ और जिन वाणी सुनकर के देश व्रत होना दुर्लभ, अनुव्रतों को धारण कर लेना दुर्लभ, और फिर कहते कि महाव्रतों को धारण कर लेना दुर्लभ है। रत्नत्रय दुर्लभ है, रत्नत्रय का धारण, दीक्षा का धरना, बहुत दुर्लभताएं हैं। ये क्रम क्रम से बढ़ती चली जाती हैं। कहते ये भी सुलभ हो जावे, अगर रत्नत्रय भी प्राप्त हो जावे तब भी उस रत्नत्रय को प्राप्त करके दुर्लभ है शुद्ध भाव करना, और दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे, पाकर इस भाव में फिर वापिस आने का काम नहीं है। वो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप बोधि है, वास्तव में बोधि किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति का नाम बोधि है। वो बोधि बहुत दुर्लभ है। आप तो कह रहे कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय प्राप्त करना कोई ज्यादा दुर्लभ नहीं है, उसके बाद और दुर्लभता शेष है। तो कहते कि रत्नत्रय इसलिए दुर्लभ है क्योंकि अगर वो रत्नत्रय केवल ज्ञान प्राप्त करा देवे, वास्तव में तो वो उसकी दुर्लभता है। रत्नत्रय प्राप्त करने के बाद भी जो है हम सो जावे तो कहते हैं कि नहीं, वो दुर्लभ नहीं था, दुर्लभ तो उसका सुफल है। रत्नत्रय का सुफल क्या है? केवल ज्ञान की प्राप्ति होना रत्नत्रय का सुफल है, और वही दुर्लभ है। रत्नत्रय तो दुर्लभ है ही, बहुत भाग्यवान होगा जिसको कि रत्नत्रय की प्राप्ति हो जावे, लेकिन उस रत्नत्रय के द्वारा जिसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जावे वो तो दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन। ऐसी निरंतर दुर्लभताओं का विचार हम करते हैं तो इससे क्या होता है, जरा विचार तो करो इस बात का। ऐसा तो हम सुनते आए हैं, धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथारथ ज्ञान। अंतिम ग्रीवकलों की हद पायो अनंत वीरियापद, पे सम्यक ज्ञान लाधो दुर्लभ निज में मुनि साधो। अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ लगाते हैं इन चीजों का। सामान्य सी बात कहने की है कि धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर, जो दुर्लभ मालूम पड़ते हैं वे भी हमें सुलभ हो सकते हैं, लेकिन वो जो वास्तव में दुर्लभ है उसको दुर्लभ समझने वाला ज्ञान प्राप्त होना बहुत दुर्लभ। हां, इन सबको दुर्लभ मानने वाले ज्ञानी बहुत हैं आज। भैया पैसा बड़ी मुश्किल में आउट है, कई जने हैं जो अनबे उनको 5 मिनट फुर्सत नहीं है मंदिर जावे की और महाराज को हार देवे की, उनकी दुकान ही में भी लगे। क्यों? उनको दुर्लभता वो ही मालूम पड़ रही है कि यही तो दुर्लभ है धन। अभी उनको ऐसा ज्ञान ही नहीं है कि इससे भी ज्यादा कोई दुर्लभ है। मुझे रत्नत्रय दुर्लभ है ऐसा ज्ञान भी कहां से प्राप्त होगा, ये भी बहुत दुर्लभ है। वो यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसा यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जावे कि ये सब चीजें जो संसारी जीवों को दुर्लभ मालूम पड़ती वे अपन को सुलभ लगने लगे, और जो आज तक प्राप्त नहीं हुई है केवल ज्ञान वो अपने को दुर्लभ मालूम पड़ने लगे, ऐसा ज्ञान दुर्लभ, ये कहना चाह रहे हैं। दुर्लभ मानता हो, अबे तो हमारो ज्ञान पैसा को दुर्लभ मानत, मकान को दुर्लभ मानत। यथार्थ ज्ञान कौन सा है? जो रत्नत्रय को दुर्लभ मानता हो, जो बोधि को दुर्लभ मानता हो, वो यथार्थ। ऐसा यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना भी दुर्लभ है, बताओ आप। उस यथार्थ ज्ञान के फलस्वरूप जो प्राप्त होगा वो तो दुर्लभ है ही, लेकिन ऐसा ज्ञान भी हमारे भीतर हो जावे और हमें अपनी जो वास्तविक पर्याय है, जो सिद्ध अवस्था है, वो दुर्लभ मालूम पड़ने लगे, तब समझना कि हाँ बोधि दुर्लभ, अब हमारे भीतर भावना आ गई। अंतिम ग्रीवकलों की हद पायो अनंत बिरिया पर, अभव्य जीव की अपेक्षा से लिखा छेढ़ाला में दौलत राम जी ने कि इस जीव ने बड़ा पुरुषार्थ करके, मुनि बन करके, महाव्रत बाहर से अंगीकार करके अंतिम ग्रैव्य तक की सीमा को प्राप्त कर लिया, वहां तक जाके उत्पन्न हो गया, लेकिन उसे अभी आत्मा की दुर्लभता का बोध नहीं हुआ। वे साधु धन्य है सो दुर्लभ निज में मुनि साधो, इसका ये अर्थ नहीं है इसमें कि कच्छु नहीं या मुनि बने में, जो अर्थ नहीं लिखो इमें, इमें जो लिखो है कि वे साधु दुर्लभ हैं जो संसार के भौतिक सुखों को सुलभ मान करके और अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना ही दुर्लभ मानते हैं, ऐसे साधु मिलना दुर्लभ, ऐसा कहना चाह रहे हैं। देखो तो आप, लेकिन अपने मन में अभी जरा विचार करना कि किस चीज को दुर्लभ मानते। हम तो यही समझते भैया कि जो उनको धीरे धीरे खर्चा करो जाए बस दुर्लभ कहाउत है, जा बताओ नहीं कहा वो समर समर के बिल्कुल बड़े जतन से, जैसे कौन छोटो सो लड़का और अपनी डबुलिया में वो पैसा जोड़ ले वे और 100 रुपया हो जाए कदाचित, उससे पूछो कि भैया क्या करोगे, कहते अबे सोचा नहीं है सोचेंगे। अरे अगर पिताजी 100 रुपए का नोट दे दें और फिर पूछो कि क्या करो, सुफोरन कह दे चॉकलेट लिया है, सबरी पूरी हो पूरे की लिया है चॉकलेट, और अपने हाथ से जो एक एक पैसा जोड़ा है उस 100 रुपए के बारे में पूछते हैं कि क्या करोगे, तो कहते अभी सोचा नहीं है सोचेंगे कैसे खर्चा करना। और ऐसा क्या अपने जीवन के बारे में लगता है कि जितनी सांसें हमें मिली हैं वे समर समर के और खर्चा करनी सोचेंगे कैसे सांस खर्चा करनी है, खराब विचार करके खर्चा करनी के अच्छे विचारों में खर्चा करनी, एक एक सांस खर्चा कर रहे हम लेकिन संभल के नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि अपन को इसकी दुर्लभता का अभी बोध नहीं है। अबे हमें दूसरी चीजें, अपनो मकान बनावे में कितनी सांसें चली गई, दुकान चलावे में और चार ठीकरा कमावे में कितनी सांसें चली गई, बे सांसें दुर्लभ नहीं है, बे चार ठीकरा जोन कमा ले वो मकान जोन बना लो वो दुर्लभ लग रहा हो कि सांसें दुर्लभ लग रही। मनुष्य पर्याय की दुर्लभता तो सब कह दी, जो उनसे पूछो वो कहते मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभ है, मनो जितने आसानी से खर्चा कर रहे उसे तो नहीं लग रही कि दुर्लभ मान रहे, के जरूर रहे, जो जिस चीज को जितने सावधानी से खर्च करे उससे मालूम पड़ता है कि वो उसको दुर्लभ मानता है कि भैया इतनी आसानी से नहीं, हमने एक एक पैसा जोड़ के यहां बनाओ है, वो ही जानता है। हम जब बोधि दुर्लभ का विचार करें तो हमारे भीतर ऐसे परिणामों में ये बात आनी चाहिए, ऐसा ज्ञान हमारे भीतर आना चाहिए कि भैया ये जब चीजें जिनको मैं दुर्लभ मानता हूं वे सब से कि क्या चीज हम दुर्लभ मानते हैं ये बहुत स्पष्ट हमारे भीतर होना चाहिए। हम संसार की चीजों को बड़ी मेहनत से हासिल करते हैं, उनको दुर्लभ मान करके हासिल करते हैं, लेकिन वे ज्यादा दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ तो मेरे लिए आत्मज्ञान है। आज हम देखते हैं भौतिक ज्ञान हासिल करने के लिए इतना कॉम्पिटिशन है, इतनी कड़ी मेहनत करते हैं लोग, इसमें सिलेक्शन हो जाए, महाराज आशीर्वाद दे दो इसमें सिलेक्शन हो जाए, मुझे ये डिग्री मिल जाए, मुझे वो डिग्री मिल जाए, मैं इतनी बड़ी पढ़ाई कर रहा हूं, इतनी दुर्लभ है कि 4 ही लोगों को मिलेगी या 10 लोगों को मिलेगी। हम इन सब बातों को बहुत दुर्लभ मानते हैं ये भी, लेकिन हमें सुलभ हो जाती है। सबसे अधिक दुर्लभ क्या है? अपने आत्मा का ज्ञान दुर्लभ है। और आत्मज्ञान कौन सा? अकेले पोथी में से पढ़ने वाला आत्मज्ञान नहीं, सच्चा आत्मज्ञान तो वो है जिससे कि काम क्रोध लोभ ये सब मिट जावें। कबीर दास कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ की जवलग घट में खान, कबीरा मूरख पंडिता दोनों एक समान। हां, जब तक ये हमारे भीतर में है, कषाएं हमारे भीतर में पड़ी हैं, पांचों पापों की प्रवृत्ति हमारे भीतर पड़ी हुई है, तब तक जो है मूरख हुए चाहे पंडित हुए, दोनों एक समान है। वास्तव में तो वो है ज्ञानवान जो इन सबको जीत लेता है। आत्मज्ञानी ही इन सबको जीत सकता है। इसलिए सम ज्ञान या कि आत्मज्ञान ही दुर्लभ है। और बाकी सब चीजें तो यहां इस संसार में किसी को कम ज्यादा और प्राप्त है ही। और अपने पुरुषार्थ से यहां पर जीव उन सब चीजों को हासिल कर लेता है। अपने आत्मज्ञान को हासिल करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। एक घटना सुनाता हूं और मेरे ख्याल से बात इतनी ही पर्याप्त है। वैसे तो महाराज ने आज इतनी बढ़िया बात सुना दी है, ज्ञान तो सच्चा वो ही है जो कि रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए और हमें पुरुषार्थ हमारे भीतर जागृत कर देवे, वो ही ज्ञान सच्चा है। हम सब भी जो है उसी ज्ञान को प्राप्त करें जिससे हमें रत्नत्रय रूपी बोधि की प्राप्ति हो। ऐसा ज्ञान, मुझे एक घटना याद आती है, और ऐसा ज्ञान सब जीवों के प्रति जो दया रखता होगा उसी के अंदर ऐसा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए वो घटना सुनाता हूं। वैसे तो और भी बहुत एक साथ कई घटनाएं याद आ गई, पर समय के अनुसार तो दो मिनट में वही घटना हो सकती है। एक बार क्या हुआ कि कोई व्यक्ति अपने ज्ञान हासिल करने के लिए किसी गुरु के पास जाता है कि मुझे ज्ञान कैसे हासिल हो, तो वो कहते हैं इस चीज का अध्ययन करो, साल भर तक तुम अध्ययन करो, फिर उसके बाद हम देखेंगे। तो वो साल भर तक गुरुजी के पास रह करके अध्ययन करता है और साल पूरी होने लगती है तो वो पूछता है कि क्या करना गुरुजी? कहते नहा धो के आओ फिर बताएंगे। तो जैसे ही जो है वो नहा धो करके लौट के आता है और उतने में एक मेहतर उसके ऊपर झाड़ू से थोड़ा कचड़ा उड़ा देता है। बड़े गुस्से में आ जाता वो कि क्या मचा रखा है, मैं इतना ज्ञानवान साल भर से अध्ययन कर रहा हूं और तेरी बिसात क्या है, मेरे ऊपर कचड़ा उछालता है। वापिस लौट के आता है, गुरुजी से पूछता कि अब और क्या करना? कहते साल भर और पढ़ो। अबे मतलब साल भर हो गई और कह रहे साल भर और पढ़ो अभी? वो और किसी ने नहीं, गुरुजी ने कहा था उस मेहतर से कि जरा धूल तोड़ा के देखना, पता लग जाएगा कितना ज्ञान है इनका। सो लग गया पता, गुरुजी को खबर मिल गई कि बड़े बौखलाए ये तो। तो कह लिया अभी साल भर और पढ़ो। साल भर और पड़ा, साल भर पूरी हुई तो इनने कहा अब आगे बताओ। कहते नहा धो के आओ फिर बताएं। फिर नहाने धोने गया तो एक और आगे तक की बात हो गई कि वो मेहतर जो है इनसे टक्कर खा करके आगे निकल गया। अब इन्होंने उसको घूर करके देखा, कहा तो कुछ नहीं लेकिन ऐसे घूर के देखा जैसे कि ये खाई जाएंगे उसको। हाँ ऐसे देखते हैं, हम नहीं देखते हैं कई लोगों को, बड़े बड़े ज्ञानवान ही लोग तक, अब तो बहुत ज्ञानवान लोगों से की इंसल्ट नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं समझिएगा आप, लेकिन देखो तो अपना ज्ञान, हम ये कह रहे हैं कि अपना ज्ञान तो देखो कितनी जल्दी जो है वो मुश्किल में डाल देता अपन को। तो थोड़ा धक्का उसने मार दिया तो कुछ मुंह से तो कुछ नहीं कहा लेकिन आंखें ऐसी दिखाई, खबर गुरुजी तक आ गई। जी बाद में आ पाए, इनने कहा कि अब क्या करना? कहते और साल भर पढ़ो। बड़ी मुश्किल, अरे भाई अब तो धैर्य की सीमा होती है, फिर भी अब चूंकि अपना स्वार्थ था कि अब ज्ञान तो हासिल करना है, गुरुजी के पास 2 साल हो गए हैं, चलो अब 1 साल और कर लो, लेकिन इस 1 साल के अध्ययन से कक्षाएं अब और अधिक मंद हो गई और 3 साल पूरे हुए तो गुरुजी ने फिर कहा कि नहा धो के आओ। और अब की बार जब नहा धो के वापिस लौटते थे तो उस मैतन ने तो पूरा भरा भराया कचरे का छबला और इनके ऊपर से डाल दिया। लेकिन अब की बार पहले तो अकेली धूल उड़ी थी तो बौखला गए थे, दूसरी बार टक्कर लगी थी तब घूर के देखा था, अब की बार तो पूरी टुकनिया कचरा की ऊपर से डाल दी, तब भी वहीं शांत खड़े रहे और उस मैतर से कहा कि तेरा धन्यवाद, तेने मुझे एक बार और पवित्र होने के लिए अवसर दिया, मैं फिर से जाके स्नान करके आता हूं। और शांत भाव से पुनः स्नान करके गुरुजी के चरणों में आके माथा टेक दिया कि अब आगे क्या करना, कहते सब होगा, अब कछु नहीं करना, जो हम करन चाहते वो तुमने सब कर दिया, हम अकेले तुम्हें पोथी के ज्ञान से आत्मज्ञानी बनने वाले लोग बहुत हैं भैया, पोथी के ज्ञान वाले आत्मज्ञानी बहुत हैं, जिसने अपने कषायों को मंद कर लिया, जिसने अपने मिथ्यात भाव को दूर कर दिया है वो व्यक्ति ही सच्चा आत्मज्ञानी है, यही दुर्लभ है और सब चीजें तो बहुत सुलभ हैं, ऐसा विचार अपन को बार बार आना चाहिए, यही बोधि दुर्लभ भावना है। इसी भावना के साथ कि ये जो रत्नत्र रूप बोधि है वो बोधि हम सबको प्राप्त हो, ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त हो जिससे हमारे भीतर रत्नत्र और महाव्रत को और मुनि बने को प्राप्त करने की भावना तो उत्पन्न हो भैया, इतना ज्ञान तो सबके भीतर उत्पन्न होना ही चाहिए। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के गुरु।